नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप स्वामी शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। संसद के बजट सत्र से पहले आज नई दिल्ली में आयोजित सर्वदलीय बैठक में सरकार ने संसद के दोनों सदनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपेक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 7 बजे नई दिल्ली में भारत मंडपन में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन करेंगे। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में आज सुबह केदारनाथ मार्ग पर चिदवासा के निकट भूस्खलन में 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। आज गुरु पूर्णिमा है, इसे व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन आध्यात्मिक गुरुओं और आचार्यों को समर्पित होता है। अब समाचार विस्तार से। संसद के बजट सत्र से पहले आज नई दिल्ली में आयोजित सर्वदलीय बैठक सम्पन्न हो गई है। इस दौरान सरकार ने संसद के दोनों सदनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपेक्षा की। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, किरेन रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल, जगत प्रकाश नड्डा, चिराग पासवान, रामदास अठवले और कांग्रेस नेता जयराम रमेश और गौरव गोगोई, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता प्रफुल्ल पटेल, डीएमके नेता टी आर बालू और तिरुचि शिवा, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिम के अजदुद्दीन ओवैसी सहित कई अन्य नेता बैठक में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 7 बजे नई दिल्ली के भारत मंडपन में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर वे सभा को भी संबोधित करेंगे। भारत पहली बार विश्व धरोहर समिति की बैठक की मेजबानी कर रहा है। बैठक इस महीने की 31 तारीख तक जारी रहेगी। विश्व धरोहर समिति की बैठक वर्ष में एक बार होती है और यह विश्व धरोहर से संबंधित सभी मामलों के प्रबंधन और विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने वाले स्थलों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है। इस दौरान विश्व धरोहर सूची में नए स्थलों को निर्धारित करने, 124 मौजूदा विश्व धरोहर संपत्तियों की संरक्षण स्थिति रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय सहायता और विश्व धरोहर निधि के उपयोग सहित अन्य प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में आज सुबह केदारनाथ मार्ग पर छिदवासा के निकट भूस्खलन में 3 श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई और 5 घायल हो गए। मृतकों में 2 महाराष्ट्र के हैं और 1 स्थानीय निवासी है। ये श्रद्धालु गोरीकुंड से केदारनाथ जा रहे थे। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल और स्थानीय पुलिस ने तुरंत ही बचाव अभियान शुरू कर दिया है। घायल श्रद्धालुओं को उपचार के लिए रुद्रप्रयाग के गोरीकुंड प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धालुओं की मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हुए घायलों को तुरंत हर प्रकार की चिकित्सा सेवा मुहैया कराने का निर्देश दिया है। आज गुरु पूर्णिमा है, इसे व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन आध्यात्मिक गुरुओं और आचार्यों को समर्पित होता है। इस अवसर पर लोग अपने गुरुओं के प्रति अहोभाव प्रकट करते हैं, जिन्होंने उनका पथ मार्गदर्शन किया और जीवन को नई दिशा दी। भगवान बुद्ध ने संबोधि प्राप्त करने पर बोधगया से सारनाथ की यात्रा की थी और आज के दिन अपना पहला धर्मोपदेश दिया था। इसलिए बुद्ध के अनुयायी के लिए भी आज का दिन कृतज्ञता ज्ञापन का होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लोगों को बधाई दी। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस अवसर पर लोग अपने शिक्षकों और आध्यात्मिक गुरुओं के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। आज के दिन ऋषि वेदव्यास की जयंती भी है और इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के आदेश को अवैध बताते हुए सिविल सेवा आवेदकों संबंधित विवादित कोटा प्रणाली पर रोक लगा दी है। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारी छात्रों से कक्षा में लौटने का आग्रह किया है। इससे पहले बांग्लादेश के उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पूरे देश में झड़पें हुई थी, जिनमें कम से कम 133 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकारी नौकरियों को लेकर भड़के असंतोष के बाद सरकार ने देश भर में कर्फ्यू लगा दिया था और देखते ही गोली मार देने के आदेश दिए थे। बांग्लादेश में बृहस्पतिवार से इंटरनेट और एसएमएस सेवा निलंबित है और बुधवार से विश्वविद्यालय तथा कॉलेज बंद है। पिछले महीने की 5 तारीख को उच्च न्यायालय के एक आदेश के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था। इस आदेश द्वारा सरकारी नौकरियों में स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए 30% कोटा रद्द करने के वर्ष 2018 के सरकार के आदेश को अवैध घोषित किया गया था। यह कोटा मूल रूप से 30% सरकारी नौकरियों में उन लोगों के परिजनों के लिए आरक्षित था जिन्होंने 1971 में बांग्लादेश के कथित स्वतंत्रता संग्राम में पाकिस्तान से आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने आज बताया कि नेपाल के 3 विद्यार्थियों सहित कम से कम 373 भारतीय विद्यार्थियों ने कल बांग्लादेश से त्रिपुरा में 2 एकीकृत जांच चौकियों को पार किया है। बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों से चल रहे कोटा विरोध हिंसक आंदोलन और बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति के कारण छात्र वापस अपने देश लौट रहे हैं। मीडिया को संबोधित करते हुए त्रिपुरा फ्रंटियर के महानिरीक्षक पटेल पीयूष पुरुषोत्तम दास ने बताया कि लगभग 300 छात्र सोनामुरा जिले के श्रीमंतपुर एकीकृत चेक पोस्ट से लौटे हैं, जबकि 76 ओखरा चेक से लौटे हैं। उन्होंने कहा कि 300 छात्र का एक और जत्था आज देश लौटेगा। बांग्लादेश में बड़ी संख्या में भारतीय छात्र मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। लाओस में भारतीय दूतावास ने 13 भारतीयों को साइबर घोटाला केंद्रों से निकालकर उनकी सुरक्षित स्वदेश वापसी सुनिश्चित की है। दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में जानकारी दी है कि वह अब तक 518 भारतीयों को वहां से सुरक्षित निकाल चुका है। इस मामले में सहयोग के लिए दूतावास ने लाओस के अधिकारियों को धन्यवाद दिया। दूतावास ने लाओस आने वाले भारतीय कामगारों से आग्रह किया है कि वे साइबर ठगों के फर्जी और अवैध नौकरियों के झांसे में आकर अपनी सुरक्षा को जोखिम में न डाले। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट पेपर लीक मामले में 3 और लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 व्यक्ति राजस्थान के भरतपुर चिकित्सा महाविद्यालय के विद्यार्थी हैं। सूत्रों के अनुसार ये दोनों आरोपी 5 मई को आयोजित परीक्षा के दिन झारखंड के हजारीबाग में मौजूद थे। गिरफ्तार किए गए 3रा व्यक्ति पेपर लीक सरगना को हर तरह की सहायता उपलब्ध करा रहा था। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्यों की संख्या में इस वर्ष मई के महीने में 19,50,000 की वृद्धि हुई है। यह वर्ष 2018 में पहले पेरोल डाटा जारी होने के बाद से किसी एक महीने में हुई सर्वाधिक वृद्धि है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि इस वर्ष मई में लगभग 9,85,000 सदस्य संगठन से जुड़े हैं और इस वर्ष अप्रैल से नए सदस्यों की संख्या में 10.96% की वृद्धि हुई है। मंत्रालय के अनुसार संगठन के सदस्यों में मई 2023 के बाद से 19.62% की वृद्धि हुई है। समझा जाता है कि यह वृद्धि रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी, कर्मचारियों के लाभों के प्रति बढ़ती जागरूकता और संगठन के आउटरीच कार्यक्रम के कारण हुई है। इस दौरान लगभग 14,00,000 सदस्यों ने संगठन की सदस्यता दोबारा ली है। मौसम विभाग ने गुजरात में आज से 25 तारीख तक और झारखंड में आज से कल अत्यधिक तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर बहुत तेज वर्षा होने की संभावना जताई है। छत्तीसगढ़ और तटीय तथा आंतरिक कर्नाटक, केरल, माहे, मराठवाड़ा, तटीय आंध्र प्रदेश, यमन और तेलंगाना में भी आज तेज वर्षा होने का अनुमान है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।